أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج سے ہماری گفتگو اور مباحثے کا جو عنوان ہے وہ کتاب بدایت الحکمہ ہے. اگر خدا کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس کتاب کی توضیع جتنی طاقت ہوئی آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. علماء کی ایک روش یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایک علم شروع کرنا چاہتے تھے تو ابتدا میں چند چیزوں کو ذکر کرتے تھے. پہلے یہ جو بیان کرنا ضروری تھا, آپ نے نام سنا ہوگا کہ اس کو رؤوس ثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یعنی آٹھ اہم مطلب. اس میں تعریف علم شامل تھی, موضوع علم, غایت علم, ایک علم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں ان کا باقی علوم سے کیا رابطہ ہے, تاریخ علم, اس قسم کی ابحاث اس علم میں ذکر کیا کرتے تھے. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ ایک سنت جو ہے وہ متروک ہو گئی, چھوڑ دی گئی, اور فقط تعریف علم, موضوع علم تک اکتفا ہونے لگا. چونکہ فلسفہ ایک انتہائی جنجالی موضوع ہے کہ جس کے بارے میں مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ذہن میں اٹھتے ہیں, تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ بعض ابحاث کے جو فلسفہ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جیسا کہ عرض کیا آپ کو محفل میں کہ وہ واٹس اپ اور ٹیلی گرام کے گروپ میں سینڈ کر چکا ہوں چھوٹے چھوٹے کلپ کے عنوان سے. آپ بعض گفتگو کو وہاں جا کر سنیں گے, ان کا تکرار نہیں کروں گا. ان سے آگے جو اضافی مطلب ہوگا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فلسفے کا لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے, یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی چند سوالوں کا جواب دیتا ہوں, وہ یہ کہ ہم فلسفہ کیوں پڑھیں. اس کو میں نے تفصیلی, جیسا کہ عرض کیا پہلے عرض کیا ہے, آپ رجوع کریں اس ٹیلی گرام کے گروپ کی طرف یا واٹس ایپ گروپ کی طرف, وہاں آپ کو مل جائے گا. لیکن خلاصے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. آیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حوزوی تعلیم پڑھیں اور فلسفہ نہ پڑھیں تو دین کو فہم بھی کر لیں, دین کا دفاع بھی کر لیں, یا نہ حتماً پڑھنا ضروری ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں فلسفہ پڑھنا ہر طالب علم کے لیے ایک مقدار تک واجب ہو چکا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ یا سبب یہ ہے کہ ہم فلسفہ حتماً پڑھیں, وہ دشمن اسلام کا اسلام کے اوپر حملہ کرنا ہے, علمی حملہ جو وہ کرتے ہیں, رد کرتے ہیں اسلام کو, اسلام کے جو اساسی و بنیادی عقائد ہیں ان کو رد کرتے ہیں, ان کا جواب دینا ہمارے لیے واجب ہے. چونکہ وہ دین اسلام کی اساس کو خراب کر رہے ہیں تو دین اسلام کی حفاظت و دفاع ہمارا فرض ہے. اور جو یہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, یہ آ کر जो अक्सर एतराजात करते हैं वो अकली होते हैं। फलसफी एतराजात होते हैं कि जो वो इस्लाम पर आकर एतराज करते हैं। अगर आप उसको जवाब देना चाहते हैं तो आप नफ़्क़ो उसूल काम आएगी उनको जवाब देने के लिए, और ना ही जो कलाम की सूरत हाल है हमारे हौजे के अंदर कि जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनको पढ़ कर भी आप इस काबिल नहीं हो सकते कि आप उनको काने कुनिंदा जवाब दे सकें। उसकी बाज़ अगर आप झलक देखना चाहते हैं तो अर्ज़ किया कलाम जदीद के जो उर्दू ज़बान में मैंने रिकॉर्ड करवा के उसको सेंड कर रहा हूँ, उसी टेलीग्राम फ़लसफ़ा व कलाम इस्लामी के नाम से जो ग्रुप चल रहा है उसमें रुजू करके देखें कि किस किस्म के एतराज़ात गरबी करते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन व दीनदारी के ख़िलाफ़। उसमें आप मुहिम तरीन जो मुफक्किरीन में आपको अगर जिक्र करूं, मसलन कांट, डेकार्ट, हेगेल, रसेल, ये इस किस्म की शख्सियात के जो आई हैं कि जिन्होंने आकर सवाल उठाया है दीन के ऊपर, ना फकत दीन इस्लाम पर, इन्होंने असल दीन के ऊपर, चाहे वो दीन मसीहियत हो, दीन यहूदियत हो, दीन इस्लाम हो, जो भी हो, इन्होंने उस दीन के ऊपर बास सवालात उठाए हैं कि जिनका जवाब देना ज़रूरी है। अगर आपने जवाब न दिया तो हमारा जो नौजवान तबका है वो उनके एतराजात के भेद चढ़ जाएगा और वो उन्हीं के अफकार के कायल होकर मुनहरिफ हो जाएंगे, जैसा कि हुआ है। ऐसे ईरान के अंदर कितने रोशन फिक्र हैं कि जो दीनी एतबार से मजबूत नहीं थे, जिनके अकायद मजबूत नहीं थे, जिन्होंने इस्लाम का दकीक मुतालआ नहीं किया हुआ था, जब गर्बी मुफक्किरीन के अफकार को पढ़ा उन्होंने तो उन्हीं के होकर रह गए। मसलन ईरान के अंदर आप देखें डॉक्टर सुरूश, मुज्तहिद शबस्तरी, बाजरगान और इस किस्म के बहुत सारे मुफक्किरीन हैं यहाँ पर, रोशन फिक्रों के नाम से जो मारूफ हैं, उनके अगर आप किताबों को जाकर पढ़ें तो कामिलन वही अफकार मिलेंगे कि जो ये शख्सियात जिनके नाम लिए हैं इन्होंने बयान किया है। अगर हमने उर्दू जबान में काम न किया फलसफे के ऊपर अच्छे तरीके से ना पढ़ा, तो हम भी अपनी यूनिवर्सिटी के तुल्लाब की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जितनी यूनिवर्सिटी का जितना भी निसाब है उनकी बेस व असास फलसफे गर्ब है। गर्बियों ने जो निसाब बनाया है, चाहे वो इक्तिसाद में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर हो, जितने भी उलूम इंसानी हैं जो निसाबी तौर पर पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनकी बेस, उनकी बुनियाद फलसफा गर्ब है। तो अगर आपने मुकाबला करना है और अपने नौजवान तबके को इनहराफ से बचाना है तो आपके लिए इल्ज़ामी है कि आप फलसफे पर काम करें, क्योंकि फलसफे इस्लामी पर खूब काम करेंगे तो आप फलसफे गर्ब को खूबसूरत अंदाज में नकद कर सकेंगे। ये एक वजह है कि जिसकी वजह से फलसफा पढ़ना आजकल के दौर में ज़रूरी है दीन की दिफा के खातिर। दूसरी वजह के जो तालिबे इल्म को मजबूर करती है कि हतमन वो फ़लसफ़ा पढ़े, वो इल्मे उसूल का फ़लसफ़ी होना है। अगरचे तमाम उलमाए इल्मे उसूल फुकहा मुत्तफिक हैं कि इल्मे उसूल उर्फी इल्म है, उकलाई है, लेकिन फिर भी बाज़ बुजुर्गान ने बाज़ वजूहात की वजह से फ़लसफ़े की बाज़ इस्तेलाहात को उसूल में डाल दिया। उसकी अगर मैं मिसाल देना चाहूं कि इल्म उसूल के अंदर फ़लसफ़ी इस्तेलाहात मौजूद हैं, आप फ़कत किफ़ाया की तरफ रुजू करें तो एक ईरानी मुअल्लिफ ने किताब लिखी है, पीश फ़र्ज़ हाय फ़लसफ़ी दर इल्म उसूल। पीश फ़र्ज़ हा यानी बाज़ वो कवायद के जिनको मुसल्लम फ़र्ज़ करके इल्म उसूल में इस्तेमाल किया गया है। पीश फ़र्ज़ हाय फ़लसफ़ी दर इल्म उसूल। इसने तकरीबन 70 कायदे फलसफी जिक्र किए हैं कि जो किफाया में इस्तेमाल हुए हैं। यानी आप देखें, एक जिल्द के ऊपर मुश्तमिल किताब इल्म उसूल की, उसके अंदर जो फलसफी इस्तेलाहात हैं वो कितनी मकदार में है, तकरीबन 70, जो मेरे जहन में है, अगर 70 से ज्यादा ना हो, 70 और 80 के रेंज में है। इल्म उसूल में फलसफा इतना इस्तेमाल हुआ है। अब अगर कोई शख्स फलसफा ना पढ़ा हो, कैसे वो इल्म उसूल हत्ता ये किफाया समझ सकेगा। मेरे एक अफगानी दोस्त है, उसने जो अपने थीसिस लिखे हैं इस कारशनासी अरशद यानी जो एम फिल कहलाता है इंग्लिश में, उसके जो थीसिस हैं उसमें उसने शहीद सदर के जो इल्म उसूल के अफकार हैं उसमें कितने फलसफी कायदे इस्तेमाल हुए हैं उसके ऊपर लिखा है। वो भी तकरीबन, चूंकि हजम कम होता है एम फिल के थीसिस का, लिहाजा वो मेरा ख्याल में 10 या 15 कायदों पर बहस कर सका है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वो करता तो वो हजम ज़्यादा होता और वो एम फिल के जो थीसिस हैं उसमें इजाज़त नहीं होती इतनी। बस अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि मैं अच्छे तरीके से इल्म उसूल में वारिद हूँ, तो उसके लिए इल्ज़ामी है कि वो फ़लसफ़ा अच्छे तरीके से पढ़े ताकि इल्म उसूल को समझ सके। तीसरी वजह के जो मजबूर करती है कि हम फलसफे को पढ़ें, वो ये है कि आप जब दीन इस्लाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं, और अकीदा भी दुरुस्त है कि ये दीन इस्लाम दीन हक है और कयामत तक के लिए है और सब के लिए है, तो अब इस अकीदा इस दीन इस्लाम को गैर के लिए भी आपने बयान करना है, ताकि आप जो गैर मुस्लिम हैं उनको जल्ब कर सकें अपनी तरफ, खींच सकें अपनी तरफ, इस्लाम से आशना करवा सकें ताकि वो राह हिदायत पर आ जाएं। तो अब गैर को जब आप इस्लाम से आशना करवाना चाहते हैं तो कुरान और अहादीस तो बयान नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी तक आपके कुरान और हदीस को मानता ही नहीं है, ईमान ही लेकर नहीं आया, तो आप कैसे अपने अकायद को कुरान और हदीस से साबित करेंगे। उसके लिए क्या जरिया है कि हम इस दीन इस्लाम को गैर के लिए इस तरीके से आशना करवाएं कि वो जब सुने इन मतालिब को, तहकीक करे इन मतालिब के बारे में, तो मुसलमान होने पर मजबूर हो जाए। उसका एक ही तरीका है कि आप दीन इस्लाम के जो अकायद हैं, मतालिब हैं, जो मआरिफ हैं, उनको अकली रंग दें, बुरहान की सूरत में जिक्र करें। अगरचे कुरान व रिवायात के अंदर ये काम हुआ है, लेकिन फिर भी बाज ऐसे मतालिब हैं कि जिनको अकली रंग देने की जरूरत है जमाने के मुताबिक। तो जब तक आप फलसफा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, फलसफी कवायद से आशना नहीं होंगे, चूंकि फलसफी कवायद मुश्तरक हैं अक्सर, चूंकि अकली हैं, और अक्ल खुसूसन इस बातें वजूद खुदा में, बाज बराहीन बाज कवायद जो हैं वो मुश्तरक हैं, गर्ब भी मानता है, शर्क भी मानता है उसको। तो जब आप उनकी जबान में बात करेंगे, मआरिफ को उनकी जबान में बयान करेंगे, तो तबीयी बात है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा दीन इस्लाम के बारे में, और अगर आपकी तबीयत अच्छी हुई तो वो मजबूर भी हो जाएगा कि वो दीन इस्लाम को कबूल करे। मिसाल देता हूं उसकी बेहतरीन, हौजा इल्मिया का फख्र कि जो वाकन बाएसे फख्र है मकतबे तशय्यो के लिए, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीरे अलमीज़ान, इनको एक फैलसूफ मिलने के लिए आया हेनरी कॉर्बन, हेनरी कॉर्बन। अब मेरे जहन से उसका मुल्क उतर गया है, पता नहीं वो जर्मनी का था या फ्रांस का, लेकिन जो मेरे जहन में ज्यादा आ रहा है वो जर्मनी आ रहा है। बहरहाल मैं देखकर दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। नाम यही है हेनरी कॉर्बन। वो जब ईरान के अंदर आया और वो गुफ्तगू करना चाहता था इस्लाम के बारे में, आशना होना चाहता था मआरिफ इस्लामिया के बारे में, तो अब जरूरत थी कि इससे वो इंसान गुफ्तगू करे जो उसकी जबान जानता हो, जिन कवायद का वो कायल है, हम कवायद से आशनाई हो। तो उसको लाया गया अल्लामा तबातबाई की खिदमत में। इनका आपस में बहस व मुबासा चला कई अरसे तक, जिसका नतीजा ये निकला कि वो इस्लाम का गर्विदा हो गया। उसके बाज मतालिब जो उनके बहस व मुबासे के थे, आजकल किताबों में छपे हुए हैं, आप रुजू कर सकते हैं उसमें। हेनरी कॉर्बन और अल्लामा तबातबाई के दरमियान जो गुफ्तगू है वो भी छपी हुई है, और फिर हेनरी कॉर्बन ने फिर बाद में बहुत सारी किताबों को तसही किया, छपवाया, उस पर मुकदमे लिखे, बहुत सारे मतालिब आपको उनमें मिल जाएंगे। अब आपने देखा कि ये जो हेनरी कॉर्बन था, अल्लामा तबातबाई चूंकि फलसफे में मजबूत थे, तसल्लुत रखते थे उसके ऊपर, आसानी से दीन इस्लाम को अकली अंदाज में उसके सामने पेश किया कि वो मजबूर हो गया कि वो इस्लाम का गर्विदा हो जाए। बस तीसरी वजह क्या बयान की कि दीन इस्लाम के मआरिफ को गैर तक अगर पहुंचाना है तो उन्हीं की जबान में बात करना पड़ेगी, अकली अंदाज में उनको पेश करना पड़ेगा, और इस काम को फलसफा बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। फलसफे का काम यही है कि दीन इस्लाम के जो मआरिफ हैं उस पर अकली इस्तदलालात को जिक्र करे आज के जमाने के मुताबिक, ताकि आज के जमाने के जितने भी हैं गैर मुस्लिम वो इसको कबूल कर सकें। आज की कैद इसलिए लगा रहा हूं चूंकि मतलब ज्यादा वाज़े हो जाए। वाला बराहीन अकलिया जो है वो जमाने के साथ खास नहीं है। अगर एक बुरहान अकली तमाम आपने इकामा कर दिया तो वो सब के लिए है, चाहे वो आइंदा वालों के लिए हो, हाल वालों के लिए हो, या आप माजी वालों के लिए भी अगर होता तो वो हतमन उसको कबूल करते उसमें आकर। और इसके अलावा आपको अगर मिसालें देना चाहूं तो मसलन आप देखें आयतुल्ला मिसबाह, बहुत बड़े फैलसूफ हैं इस वक्त। गर्ब से कोई भी फैलसूफ अगर आता है जो दीन इस्लाम से आशनाई पैदा करना चाहता हो तो चंद शख्सियात की खिदमत में उनको लाया जाता है। उनमें से एक आयतुल्ला मिसबाह यजदी हैं और एक उनमें से आयतुल्ला जवादी आमली हैं, आगासनज़ादा आमली भी हैं। क्यों फकत इन शख्सियात की खिदमत में उनको हाजिर किया जाता है, क्यों बाकी शख्सियात के पास नहीं लेकर जाया जाता? क्योंकि मालूम है कि इसको दीने इस्लाम के मआरिफ अकली जबान में पेश करने हैं, उसकी जबान में पेश करने हैं। और जो बंदा फलसफा इस्लामी के अंदर तसल्लुत पैदा कर ले और फिर गर्ब का फलसफा जो है उसका मुतालाआ कर ले, वो इस काबिल हो जाता है कि जो भी कोई गर्बी फैलसूफ दीन इस्लाम के बारे में बात करना चाहे तो उससे आसानी से आप गुफ्तगू कर सकते हैं, मुबाहसा कर सकते हैं, मतालिब को नकल व इंतकाल कर सकते हैं। लेकिन जो फलसफा इस्लामी में भी काम ना करे, जो फलसफा गर्ब के अंदर भी काम ना करे, बईद है कि वो मआरिफ इस्लामिया को मुंतकिल कर सके किसी दूसरे तक। पहली वजह के अंदर मुझे एक दो मिसालें जहन के अंदर आई हैं, उसका इजाफा कर दूं दिफा का जो अर्ज किया था। आप देखें यहां ईरान के अंदर जब हमला किया गया इस्लाम के ऊपर अवाइल इनकलाब में, और अब भी जो दीन इस्लाम पर हमले हो रहे हैं इल्मी एतबार से गर्बी मुफक्किरीन की तरफ से, आप जाके मुतालआ कर सकते हैं, हौज़ा इल्मिया कुम के अंदर मौजूद हैं, हौज़ा इल्मिया नजफ के अंदर जाकर आप देख सकते हैं, सफर करके आप ये देखें कि इन मुफक्किरीन को जो दीन इस्लाम पर एतराजात उठा रहे हैं जवाब कौन दे रहा है। यहीं से आपको अहमियत का पता चल जाएगा। आया सुरूश के एतराजात को, शबस्त्री के एतराजात को, मलकियान के एतराजात को, कांट और रसल और हेगल के एतराजात को जवाब देने वाले फैलसूफ हैं या जिन्होंने असलन फलसफा पढ़ा ही नहीं है? आप जाके देख सकते हैं। आया आयतुल्ला मिसबाह, जवादी आमुली, हसनजादा आमुली व शागिरदाने इस मकतब के जो शागिरदान हैं वो दिफा कर रहे हैं, या वो दिफा कर रहे हैं और किताबें लिख रहे हैं उनके खिलाफ कि जिन्होंने असलन फलसफा या पढ़ा नहीं है या असलन फलसफे ही के मुखालिफ हैं? ये आप आसार जाकर खुद देख सकते हैं, नजफ के अंदर भी, यहां भी आपको खुद मालूम हो जाएगा अहमियत का कि फलसफा कितनी अहमियत का हामिल है। बस एक वजह जिक्र की कि मतालिब को आपने अकलानी करके पेश करना है, अकली पेश करना है, लिहाजा फलसफे की जरूरत है। एक और वजह जो है जिसकी वजह से फलसफा पढ़ना जो है वो जरूरी है, वो ये कि कुरान व खुसूसन रिवायात के अंदर बाज़ ऐसी ताबीरें हैं, बाज़ ऐसे मतालिब हैं कि अगर आपने फलसफ़े इस्लामी के अंदर काम न किया हो, उस पर तसल्लुत न रखते हों, तो आप उन मतालिब को सही तरीके से फहम नहीं कर। تعبیریں موجود ہیں ایسی. میں انشاءاللہ اس مطلب کو, یہ جو آخری وجہ آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے, اس کو تفصیلی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر ابھی میں نے شروع کیا تو وقت کم پڑ جائے گا, اس کو بعد والے درس پر موقوف کرتے ہیں تاکہ یہ مطلب اور زیادہ کھل کے سامنے آئے, چونکہ بعض سوالات بھی دوسرے دوستوں کی طرف سے اٹھے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں کہ آیا واقعاً فہم قرآن اور فہم روایات کے اندر فلسفہ نقش رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. جو فلسفے کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلاً نہ صرف یہ کہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر آپ فلسفے کے ذریعے قرآن اور روایات کے اندر آئے تو وہ مضر بھی ہے, ضرر بھی پہنچائے گی معرفت دینی کو. لیکن اگر انسان منصفانہ انداز میں تحقیق کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ دعویٰ غلط ہے, درست نہیں ہے. انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.